मुझे पता है कि तुम उलझे हुए हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझे अपनी अम्मी को क्या कहना चाहिए।
हमेशा की तरह कह दो ना कि काम पे
हूं। और हमेशा की तरह मेरी अम्मी बड़बड़ा कर कहेंगी कि अगर तुम्हारा मंगेतर किसी काम का होता तो उसके काम की उलझने कम होती।
अच्छा तुम खुद उसका कुछ कर दो, बिल्कुल उनसे कह दो अगले प्रोग्राम में मैं शुरू से लेकर आखिर तक रहूंगा।
अगला प्रोग्राम ब्राइडल शॉवर है।
अच्छा एक काम करो, अपनी बहन और अहमद साहब से कह दो जब उनका बच्चा पैदा होगा तो उनकी खिदमत में हम पहुंचेंगे। इस वक्त तो तुमने माफ कर दिया ना।
कोई और चारा भी है मेरे पास?
तुम नाराज हो मुझसे?
नहीं।
वाकई सच कह रही हो?
फिर शुरू मत करो, अब तुम ये पूछोगे कि मैं नाराज हूँ या नहीं।
मैं तुम्हें चाहता हूँ ना इसलिए।
ठीक है जाओ अपना मिशन निपटा लो, बाद में सारी गलती मेरे सर पर मत डाल देना।
मेरा तो हमेशा ख्याल आपके पास रहता
है। खुदा हाफिज़।
नहीं करोगे तो एक मुसीबत है, करोगे तो 100 मुसीबतें हैं।
क्या?
शादी का कह रहा हूँ भाई।
आज रात मेरी साली की शादी है और मैं यहाँ पर हूँ। मुझे जो बर्दाश्त कर लेती है ना उसका बहुत बड़ापन है।
मुस्तफा मैं भी कहीं तुम्हारी तरह ना बन जाऊं।
मुझे तो बहुत लगता है कि तुम माकूल आदमी का भी बन सकोगे।
देख लेंगे तुम्हें भी।
अच्छा हो तुम यहां बैठो, मेरी आंखें सूज गईं।
बेचारे का ना मूड सही है और ना ही खाना पीना।
बेफिक्र हो गए, अब वो रात का खाना खा रहा है।
हाय अगर इसकी भी कोई ऐसी माँ होती मेरी माँ की तरह कि जो इसको बताती कि फ्रिज कोई अलमारी नहीं है तो इस पर वो मेज़ पर बैठकर खाना खा रहा होता। देखो अगर तुम्हारा दिल शादी में लगा हुआ है तो चले जाओ।
और इस बेचारे को तुम्हारे सपोर्ट कर दूं।
तुमने गौर किया मुस्तफा?
किस चीज पर?
इस बात पर कि तुम जब अपनी बेगम के साथ बात करते हो तो तुम्हारी जुबान तेज चलने लगती है।
मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें ऐसी कोई मिल जाए जो तुम्हारी बोलती बंद करे।
ठीक है।
उसने खुदकुशी कर ली।
अरे नहीं,
एम्बुलेंस को इत्तला दो।
इस नंबर पे फोन करो, तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा।
साले ध्यान रखना, अगर वो समझ जाए कि हमने उस पर नजर रखी थी तो केस जल जाएगा।
फाड़ में जाए, वो शख्स मर रहा है। दरवाजा खोलो।
मेरे लड़कपन का दौर भी मुट्ठी भर अजनबी लोगों के दरमियान स्वीडन में गुजरा। ऐसे लोगों के बीच जिनकी जबान भी मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आती थी। मैं 8 साल का था कि मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को छोड़ दिया। मैंने 3-4 साल तक अपने अब्बू के साथ जिंदगी गुजारी। एक के बाद एक बदकिस्मती। एक एक्सीडेंट में मेरे अब्बू मारे गए, उस एक्सीडेंट में मैं भी उनके साथ था। अब तक उस एक्सीडेंट की तस्वीरें मेरे लिए एक डरावने ख्वाब की हैसियत रखती हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो एक अरसे तक मेरे चचा मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे ईरान लौटा दिया। दिन गुजरते रहे और जब रफ्ता रफ्ता मैं बड़ा हुआ तो तन्हाई ने और ज्यादा मेरे ऊपर दबाव डाला। मेरे चचा ने मेरे लिए काम का बंदोबस्त किया क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी थी। मैं रोजाना अपने वक्त पर काम पे चला जाता और अपने वक्त पर ऑफिस से बाहर निकल जाता था। ऑफिस से बाहर के औकात मेरी जिंदगी के लिए फारिग औकात थे। उन औकात के दौरान मैं जैसे खला में था, ना कोई हिस ना कोई हलचल। इसीलिए मेरी एक अजीब आदत सी बन गई थी। फिर मैंने देखना शुरू किया, लोगों को देखना, लोगों की जिंदगी को देखना। इस तरह मुझे एहसास होता कि मैं जिंदा हूँ, उस अंधे की मानन जो अपने इर्द गिर्द के मनाजिर को दूसरे लोगों के बयान की निगाह से देखता है। मैं भी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी के पसे पर्दा से महसूस करता था।
तुम सिर्फ उन लोगों का पीछा करते थे जिन लोगों का एक खास पहनावा होता था।
ज्यादा मैं उन अफराद का ताकुब करता था जो दूसरों से मुख्तलिफ थे।
क्यों?
मेरी नजर में वो दिलचस्प लोग होते थे।
कहां तक उनका पीछा करते थे?
जहां तक मैं उनकी जिंदगी की कहानी का अंदाजा लगा सकूं।
तो क्या हो सकता है कि सड़क पर एक इंसान को देखो और उसकी जिंदगी का पता लगाओ?
आखिर मेरे अपने कुछ बनाए हुए उसूल थे,
नफ्सियात के कवानीन।
शायद।
तो फिर हम कुलीग हैं?
नहीं मालूम, बस कानून था और क्या।
मिसाल के तौर पर?
मसलन वो लोग जिनके पास ब्रीफकेस है वो बुलंद परवास लोग हैं। जिन लोगों के बाल लंबे हैं एक तरह के अजीब खुद नुमाई करने वाले लोग हैं। वो लोग जो हल्के रंग के कोट पहनते हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपने माजी पर फख्र करते हैं, नुमाया हैं वो लोग। या जो लोग महंगे जूते पहनते हैं वो किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं मगर दूसरों के सहारे। और जो लोग स्पोर्ट शूज पहनते हैं वो बस दौड़ते ही रह जाते हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती।
और वो लोग जो खास ऐनकों के पीछे से खास लोगों की तरफ देखते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं, वो क्या है?
वो अकेले हैं, मौत की तरह अकेले हैं। आपने मुझे कैसे पहचान लिया?
वजारत की सिक्योरिटी के जरिए। चले छोड़ दें, इसके बाद तुम क्या करते थे?
किस चीज के बाद?
पीछा करने के बाद
मैं उनके घर जाता था।
वहां क्या करते थे?
टीवी देखता था।
يعني بطولة أولى في بيروت بمشاركة الأردن والكويت وسوريا.
मतलब ये है कि तुम फिर भी उन लोगों का पीछा करते थे लेकिन टेलीविजन पर।
कभी ऐसा हुआ है आप तन्हाई की शिद्दत से भागकर भीड़ में चले जाएं?
तो क्या अकेले इंसान के लिए सब कुछ जायज है?
कम से कम मैं कुछ ऐसा सोचता था। मैं मजबूर था, तन्हाई से डरता था। एक मजहका खेस चीज थी मेरे लिए, एक डरावना ख्वाब। जब आप स्टेडियम में जाते हैं पहले आपकी निगाह पूरे हुजूम पर होती है, फिर अचानक किसी एक पर टिक जाती है, फिर आप उसके तमाम हरकत और सकनात की निगरानी करते हैं, फिर आप महसूस करते हैं कि वो आदमी आपके लिए एक खास आदमी बन गया है।
एक ऐसा खास शख्स जो कुछ मिनटों में दोबारा गुम हो जाता है, ये तो अच्छा एहसास नहीं है।
मान लीजिए आप एक बच्चा हैं और आप किसी चीज को उठाना चाहते हैं, मगर आपका हाथ उस तक नहीं पहुंचता। उसे उठाने के लिए आप शब और रोज मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप उसे उठाना चाहते हैं उसी वक्त कोई आकर उसे उठा लेता है और वो आपके हाथ से चली जाती है।
ताज्जुब-खेज है।
अजीब नहीं, हौलनाक है। जब आपकी जिंदगी में कोई खास आदमी आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको ढूंढ लें, लेकिन जब आप कामयाब ना हो तो उसको बना लेते हैं। हत्ता खेल के मैदान में भी ऐसा कर लेते हैं।
आवाज तुम्हें तकलीफ देती है?
नहीं, हर आवाज ऐसी नहीं है।
उसकी तो कोई खास आवाज नहीं है।
कोर्ट की मेज पर जज के हथौड़ा मारने से शबाहत रखती है।
तो क्या तुम कोर्ट भी गए हो? किस बात के इल्जाम में तुम गए? तुम्हारा जुर्म साबित हो गया था? ये बताओ, तुम औरतों का भी पीछा करते थे?
नहीं।
क्यों?
दर्द सर मोल लेने का हौसला नहीं था मुझमें।
तो फिर तुम ये नुमाइश करना चाहते हो कि खुफिया अलकारों की तरह काम करते हो? क्यों?
मैं सिर्फ देखता था, सिर्फ ये देखना चाहता था कि लोग किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। मुझे जिंदगी गुजारना नहीं आती थी।
तो फिर तुम इत्तेफाकी तौर पर अपने अफराद का इंतखाब करते थे?
मैं अपने शिकार का एक बार से ज्यादा पीछा नहीं करता था, लेकिन इस बार मैंने कानून को तोड़ दिया। अपने कानून को मैंने खुद तोड़ा और यहीं से मेरा दर्द सर शुरू हो गया। पहली बार दूसरों की तरह मैंने इत्तेफाकी तौर पर उसे देखा। वो तमाम अलामतें जो उन लोगों में पाई जाती थीं जिनका मैं पीछा करता था उसके पास पाई जाती थीं। स्पोर्ट शूज, अजीबोगरीब बैग, खास जूते, खुलासा ये कि हर वो चीज़ जिसका मैं ताकुब करता था उसके पास मौजूद थी।
मतलब ये कि एक मुमताज खुदनुमाई करने वाला आदमी जो चाहता है किसी जगह पर पहुंच जाए लेकिन दौड़ नहीं सकता है?
नहीं, मतलब ये कि एक शिकारी जो अपने शिकार की हालतों को अच्छी तरह से जानता था। मतलब ये कि किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं था। उसको पहले से पता था कि मैं किस किस्म के लोगों के पीछे पड़ जाता हूँ, इसीलिए उसने अपने को उन जैसा बना रखा था। मैं तमाम लोगों को पसंद करता था लेकिन उनके साथ जुड़ नहीं सकता था। मैं कभी अपनी गाड़ी से काम पर नहीं जाता था। मुझे बस पसंद था कि बस में, मेट्रो में, टैक्सी में बैठकर उनकी बातों को सुन लूं। एक दावत की तरह के इंसान लोगों की बातों से अंदाजा लगाता है कि वो किस किस्म के हैं। इसीलिए मैंने एक बात को अच्छी तरह से समझा है।
क्या?
के लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो खुद को जाहिर करने की कोशिश करते हैं।
मैं कौन हूँ?
नहीं मालूम।
पुलिस तो नहीं हो तो फिर क्यों मेरा ताकुब कर रहे हो?
मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि आप मेरे पुराने क्लास फेलो हैं, इसलिए मैंने सोचा आके देखूं कि हैं या नहीं है।
तो फिर क्यों तुमने मुझसे नहीं पूछा?
क्योंकि अगर आप वो ना होते तो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती।
इससे ज्यादा तुम्हारा नाम क्या है?
रोजबे।
कितने साल की हो?
37।
मुसव्वर हो, म्यूजिशियन हो, हदायतकार हो?
मेरे ज़ाहिरी हुलियों को ना देखिए, आपको क्यों लगा मैं एक फनकार हूँ? यह पैदाइशी है सर।
इसलिए कि तुम लोगों से लगाव रखते हो।
मुतरजम हूँ मैं।
तो फिर मेरा अंदाजा सही था, तुम अदीब हो।
नहीं, मैं दूसरों की तहरीरों का तर्जुमा करता हूँ।
बहरहाल वो भी अदब है।
असल में मैं जिन तहरीरों का तर्जुमा करता हूँ वो मुट्ठी भर कुछ माहदे हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं।
किस जुबान में?
इंग्लिश में।
तुमने मेरा नाम तक नहीं पूछा, तुम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि इसके अंदर क्या है, है ना?
देखिए, मैं जो भी कुछ हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है?
कामिल। तुमने सोचा इसके अंदर मंशियात हैं?
मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची। आप अदीब हैं?
नहीं, मैं शाती इदारे में काम करता हूँ, लेकिन आदत के मुताबिक पहले तबाशुदा नुस्खे को अपने लिए उठा लेता हूँ। क्या है, मेरी शक्ल से नहीं लगता कि मैं ऐसे काम कर सकता हूँ?
नहीं, क्यों नहीं, लेकिन बहरहाल ये बैग और जूते और आपकी जाहिरी शक्ल, इससे ये सब मेल नहीं खाता।
मुझे पसंद नहीं है कि कोई एक ही नज़र में समझ ले कि मैं कैसा आदमी हूँ।
लेकिन आप खुद एक नज़र में समझ लेते हैं कि लोग किस तरह के हैं, है ना?
एक पुरसकून जाहिर, एक बेसकून बातिन।
अच्छा, तो चेहरा पढ़ना भी आता है आपको?
हम एक तरह से एक जैसे हैं। तुम भी नहीं चाहते हो कि मेरी तरह कोई जान ले कि तुम कैसे इंसान हो।
उसको पहले से पता था कि मैं किस किस्म के लोगों के पीछे पड़ जाता हूं।
तुम क्यों इस हद तक तन्हा थे?
ये सवाल तो ऐसा है जैसे डॉक्टर अपने मरीज से पूछे कि तुम बीमार क्यों हो गए हो।
अच्छा, तो किसी को तलाश कर लेते ताकि तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाती।
हम बहुत जल्दी एक दूसरे से करीब हो गए। एक मकनातीस था उसकी शख्सियत में, एक कशिश थी उसकी शख्सियत में। ये हो ही नहीं सकता था कि उसको देखो और उसकी तरफ खींचे ना चले जाओ।
हर एक को चाहिए कि अपनी जिंदगी में एक बार एक जबरदस्त कहानी लिखे।
कैसी कहानी?
अपनी जिंदगी की कहानी।
बहुत सी जिंदगियां बिल्कुल खाली होती हैं, उसमें कुछ नहीं होता।
वो भी दिलकश है। इसकी तरह।
इसको पढ़ा तुमने?
100 बार, हमेशा मेरे साथ है।
इसमें क्या चीज तुम्हें दिलचस्प लगी?
ट्रेजडी दिलकश है। میری نظر میں یہ ہمارے زمانے کے اکثر لوگوں کی ٹریجڈی ہے.
زیادہ تر دردناک ہے.
کس لحاظ سے دردناک ہے؟
کسی شخص کی خام خیالیوں کی شکست حقیقی دنیا میں.
تمہارے جیسا ایک شخص؟
اتفاق سے میری مشکل یہ ہے کہ میرا کوئی خیال نہیں ہے, آرزو نہیں ہے. کبھی کوئی آرزو نہیں تھی میری.
زندہ رہنے کے لیے آرزو کی ضرورت ہے.
زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے.
تمہیں وہ مل جائے گی اوبلوموف.
وہ اوبلوموف جس کی کوئی آرزو نہ ہو وہ بے وقوف ہے, احمق ہے.
وہ بھی مل جائے گی.
اور کچھ دن کے بعد کاوے کی بہن میری نظروں کے سامنے آئی. آرزو. اچھے خاصی زحمت ہو گئی آپ کو.
نہیں, کھانا تو ہم نے باہر سے منگوایا ہے.
ایک بیماری ہے جو ہمارے خاندان میں موروثی ہے, وہ بھی بلا تکلف تکلیف دہ ہے.
یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے.
حقیقت اور جھوٹ کا فرق ان کی ظرافت میں. جھوٹ میں ظرافت پوشیدہ ہے, فنکارانہ ہے, لیکن حقیقت بدشکل ہے. جھوٹ وہ چیز بتاتا ہے جو ہونی چاہیے تھی, لیکن حقیقت منحصر ہو جاتی ہے اس چیز میں جو ہے.
آپ نہیں کھائیں گی؟
نہیں, مجھے بھوک نہیں ہے.
ابھی اس کا جھوٹ اس کی حقیقت سے زیادہ دلکش ہو سکتا تھا. صوفے پہ بیٹھ جاتی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھیر دیتی.
کسی بات پر ناراض ہیں کیا؟
نہیں.
کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں مجھے.
کچھ عرصے سے اس طرح ہے.
کیوں؟
یوں لگتا ہے کہ تمام خواتین جلد یا دیر سے اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ اگر وہ پورے سار نظر آئیں تو زیادہ دلکش لگتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے, ہے نا؟ کسے ایک باتوں نہیں عورت جو پہلے سیکنڈ میں ہی اپنا موبائل نمبر لکھ کر دے دے, اچھی نہیں لگے گی.
پہلی بار میں میں نے محسوس کیا کہ ایک بڑا غم اس کی نگاہوں میں ہے. ہمارے ساتھ تو تھی مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی. مجھے یقین تھا کہ کوئی راز اس کے دل میں ہے جو اسے تکلیف دے رہا ہے. میں نے دوبارہ آرزو کے حالات کے بارے میں کامل سے بات کی, لیکن وہ اس حد تک اپنی بنائی ہوئی چھوٹی بڑی تھیوریوں میں الجھا ہوا تھا کہ اس کی اس بات کی جانب کوئی توجہ نہیں تھی. مجھے آرزو پر ترس آ رہا تھا.
آرزو ایلویرا کی دل دادا ہے.
ارے لیکن آئی کیوں نہیں وہ؟
سست ہے ہمیشہ کی طرح.
کامل دیکھو, میرے خیال میں آرزو کو کوئی پریشانی ہے.
کس کو نہیں ہے؟
ارے تم اس کے بھائی ہو, تمہیں معلوم ہونا چاہیے.
ہمیشہ ایک ہی خون سے ہونا ہر مسئلے کا حل نہیں کرتا, مجھ سے نہیں کہتی.
یعنی تمہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے؟
وہ بچی نہیں ہے, اسے سیکھ لینا چاہیے کہ اپنے مسائل سے خود نمٹ لے. کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہوگی اور کچھ اور لوگوں کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی.
کہیں رشتہ چل رہا ہے کیا؟
نہیں, بہرحال ہر لڑکی ایک دن شادی کرے گی.
اور تم؟
شادی؟
ہاں.
پاگل پن ہے.
بیٹھو یار. ہر پاگل پن برا نہیں ہوتا کامل.
میں نے فیصلہ کیا ہے ان معاہدوں سے دور رہ کر زندگی گزاروں.
تمہیں اب تک کسی سے پیار نہیں ہوا؟
میرے خیال میں پیار انسانوں کی ایجاد ہے, اکتاہٹ اور روزمرہ امور سے بھاگنے کے لیے.
تم بڑے بدگمان آدمی ہو.
میں حقیقت پسند ہوں. پیار انسانوں کی زندگی کے لیے کئی مراحل بناتا ہے. قدم بڑھانا اس میں ہوتا ہے, مسترد کرنا اس میں ہوتا ہے, رنج و اندوہ اور آہ و نالے اور خوشی و غم اس میں ہوتے ہیں. مختصر یہ کہ پرپیچ و خم راستہ ہے.
اس کا پہلا مرحلہ زیادہ سخت ہے.
کون سا؟
قدم بڑھانا.
دیکھو روزبے, زندگی کے لیے صرف خیال اور خواب رکھنا کافی نہیں ہے, اس کو رکھنے کی قابلیت بھی تم میں ہونی چاہیے, شہامت کے ساتھ.
میں آہستہ آہستہ آرزو سے پیار کرنے لگا تھا. اس کے ساتھ زندگی کے تصور سے مجھے لطف آتا تھا. میری زندگی میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی احساس سے مجھے لطف آ رہا ہو. ان لوگوں کی موجودگی میری زندگی میں اس بات کا باعث بنی تھی کہ میں سمجھ لوں کہ اب میں اکیلا نہیں رہ سکتا ہوں. آرزو بھی کامل کی طرح ایک عجیب مغناطیسی کیفیت رکھتی تھی.
اور تم اس کی طرف کھینچتے چلے گئے؟
میں ان دونوں کا چاہتا تھا. وہ دونوں مل کر ایک وجود تھے. میں نے پہلی مرتبہ فیصلہ کیا کہ اب ایک تماشائی بن کے نہ رہوں. کچھ دن تک میں اپنے ساتھ الجھتا رہا کہ اپنے اندر یہ جرأت پیدا کروں کہ آرزو سے اکیلے باہر چلنے کو کہوں. میں چاہتا تھا کہ اس کو شادی کی تجویز دوں, لیکن کاش میں کامل کی اس دن کی بات کو سمجھ لیتا. اس نے کہا تھا کہ پیار کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے چاہا کہ شادی کے بارے میں اس سے بات کروں, لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ گئی. آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو میں اسے حاصل کر کے رہوں گا.
تمہیں یہ جگہ اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ اندھیرا ہے اور یہاں کھڑکی نہیں ہے؟
انسان کسی نہ کسی طرح یہاں سکون کا احساس کرتا ہے.
تم کس بات سے فرار کر رہی ہو؟
اپنا وقت میرے لیے ضائع مت کرو.
اوفو, تم تو بالکل فلمی ڈائلاگ مار رہی ہو.
میں سچ کہہ رہی ہوں, کامل کے بقول ہم دوسروں سے الگ ہیں.
اچھا ہے, کیونکہ میں بھی اسی فرق کا دل دادا ہوں.
لیکن تم ایک آرام اور پرسکون زندگی کے لائق نہیں ہو.
تمہارا نام آرزو ہے, کوئی ڈراؤنا خواب نہیں.
انسان کو سہانے خواب سے نفرت ہو جاتی ہے جو کسی دن اس کا ڈراؤنا خواب بن جائے.
مجھے لگتا ہے شادی کے بارے میں کامل کی باتوں نے تمہیں کچھ ناراض کیا ہے.
میں اور تم بالکل ایک دوسرے سے شباہت نہیں رکھتے ہیں.
میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ فرق سب سے زیادہ محرک ہے بات کرنے کے لیے, شباہت نہیں.
تم مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟
حقیقت کو.
اتنی ساری ہٹ درمی کس لیے؟
کیونکہ پہلی بار میں چاہتا ہوں اس چیز کو جو میں پسند کرتا ہوں پالوں.
تمہیں یقین ہے کہ اس حقیقت کی بدصورتی باعث نہیں بنے گی کہ تم اس سے نفرت کرو؟
میں ہر چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, کیونکہ تم شدت کے ساتھ خود ہو, تمہارے اندر جھوٹ نہیں ہے.
تمہیں یقین ہے؟
مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا اس وقت رات ہونے پر ہے.
तुम्हारे दिल में कोई एक बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो।
अपना टाइम जाया मत करो, मैं और तुम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे।
अहम बात यह है कि हम एक दूसरे के किसी दर्द की दवा बन जाएं, वही दर्द जो आदमी किसी से नहीं बता सकता।
लेकिन तुमसे भी कोई काम नहीं बन पाएगा।
मुझे लगता है कि तुम अगर मुझे एक बार आजमा लो तो कोई बुरा नहीं है।
दरअसल मुझे अब किसी मर्द पर एतबार नहीं रहा।
ये बेतबारी कहां से आ गई आरज़ू?
एक बहुत बुरे तजर्बे से।
और तुम चाहती हो कि उस बुरे तजर्बे को अपनी आखिरी सांस तक अपने साथ खींचते फिरो, उसको फरामोश नहीं करना चाहती?
मैं चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसा करने नहीं देता।
वो कौन है?
हर चीज एक पार्टी से शुरू हुई। एक दिन मेरी दोस्तों में से एक ने मुझसे चाहा कि मैं उसके साथ एक पार्टी में चली जाऊं।
पार्टी में वो एक मर्द से वाकिफ हो जाती है जो किसी सिफारतखाने में काम करता था। उस आदमी ने उससे मिलने जुलने की कोशिश की, फिर उसका एतमाद हासिल किया, फिर उसको शादी की तजवीज दी। आरज़ू कहती है कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो आदमी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं इसलिए सब्र कर सकता हूं, हो सकता है तुम्हारी राय बदल जाए। फिर एक दिन वो आदमी आरज़ू से कहता है कि उसके साथियों में से किसी के घर दावत पे जाना है। फिर वो आरज़ू को वहां ले जाता है और जबरदस्ती उसकी ढेर सारी फिल्में और तस्वीरें बना लेता है। फिर उससे कहता है कि अगर तुमने कहीं कोई एतराज किया, कहीं इस बारे में बताया, तो मैं तमाम तस्वीरों और फिल्मों को इंटरनेट पर डाल दूंगा।
आरज़ू को यह समझ लेना चाहिए था कि तुम जैसे खबीस आदमी के पास इस तरह के गंदे लोग भरे पड़े हैं। अब वो चुप रहने का तावान क्या मांग रहा है?
वो आरज़ू को सिफारतखाने की बास पार्टियों के लिए ले जाना चाहता था। आरज़ू ने भी उसको मना कर दिया था।
तुम ये नुमाइश करना चाहते हो कि खुफिया अहलकारों की तरह काम करते हो? तुम तो कहते हो कि एक मरतबा देखने के बाद आदमी के बारे में समझ लेते हो कैसा है। तुम कैसे नहीं समझ सके?
इसलिए कि आरज़ू एक ऐसी लड़की थी कि ये नहीं हो सकता था कि उसका आशिक ना हुआ जाए। वो तमाम लोगों से अलग थी, तमाम लड़कियों से। वो एक खास लड़की थी।
तो क्या इससे पहले भी तुम बहुत सी लड़कियों को जानते थे?
नहीं नहीं नहीं।
तो फिर कैसे इत्मीनान के साथ कह रहे हो ये बात? कैसे उस पर एतमाद किया तुमने?
एतमाद करने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, बेएतमादी के लिए दलील जरूरी होती है। ये भी मेरा अपना बनाया हुआ उसूल था जिसने मुझे तरते सर में डाल दिया।
बहुत अच्छा, उस रात के बारे में बताओ।
हकीकतन मैं नहीं चाहता कि उसको दोबारा दोहराऊं। मैं इल्तिजा करता हूं आपसे।
यह आखिरी बात है जो तुम करोगे, उसके बाद मैं बात करूंगा, ठीक है?
उससे 2-3 दिन पहले कामिल ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि किसी काम की वजह से उसको जर्मनी जाना होगा। उसने कहा आरज़ू का ख्याल रखना। मैं जानता था कि उसके खानदान वाले सिमनान में रहते हैं। उस रात आरज़ू ने मुझे फोन किया। वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि उस आदमी ने धमकी दी है कि वो तस्वीर और फिल्में कामिल और उनके जानने वालों के हवाले कर देगा। वो मुझसे बोली कि अगर ऐसा हो गया तो वो जरूर खुदकुशी कर लेगी। आरज़ू ने उस आदमी से बात करने के लिए अपने घर के करीब उसे कहीं बुलाया था। वो अगर आया तो मैं जाके उससे बात करूंगा, ठीक है?
हाँ, उस सूरत में वो भी तुमसे हाथ मिलाएगा और कहेगा एक लड़की को ब्लैकमेल करना बिल्कुल शरीफाना काम नहीं है।
तो फिर तुम्हारे ख्याल में मैं क्या करूं?
मैंने खुद गलती की है और खुद ही उसको दुरुस्त करूंगी।
वो देखो, वो आ गया है, आ गया है।
ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो?
तुम पागल हो गई हो आरजू? रुक जाओ,
अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
आरजू ना करो, रुक जाओ, रुक जाओ।
ओ
आरजू, 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 ये मर गया।
तो फिर एतमाद करने के लिए भी दलील की जरूरत है।
अगले दिन मैं उसके घर गया, मगर वहां पर कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां बरसों से कोई नहीं है। आपको पता है मुझ पर कैसी हिस्तारी हुई?
कैसी हिस?
आपने बड़ी ख्वाहिशात नामी किताब पढ़ी है?
नहीं।
मुझे लगा कि मैं मिस हैविशम हूं।
मिस हैविशम?
वही बुढ़िया जिसकी जवानी में वो मर्द जो उससे शादी करने वाला था, ठीक उसकी शादी के दिन उसको धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। बुढ़िया पागल हो गई। उसी शादी के जोड़े और आसाइश और जेवरात के साथ 40-50 साल तक उसका इंतजार करती रही। आप जरा तसव्वुर कीजिए, एक 70 साला बुढ़िया शादी के जोड़ों के साथ। मेरा हाल भी वही था, इस फर्क के साथ के उसके ना आने का मुझे यकीन था।
कोई भी शख्स धोखा खा सकता है।
प्यार करने वाले के धोखे में आना हौलनाक है। मैंने कुछ दिन जुकाम का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ली। मुझे वक्त की जरूरत थी ताकि अपने पांव पर खड़ा हो सकूं। कई दिन तक, दिन में कई बार वो मुझे वो तस्वीर ईमेल करती थी। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे क्या चाहती है।
यहां तक कि वो बर्नार्ड के साथ आता है तुम्हारे पास।